Hello, can you hear me? तो बाबा हमें कैसा देखना चाहते हैं? सदा खुश। तो भगवान की इच्छा को हम सब पूरा करेंगे, करेंगे, करेंगे। माताओं का क्या इरादा? माताएं सब पीछे, पीछे वाली माताएं बताओ बाबा की इच्छाओं को पूरा करेंगी, करेंगी। कौन खुश नहीं रहने देता मनुष्य को? हाँ बेटा, तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, पर एक संकल्प के साथ कि हमें अपनी खुशी खोनी नहीं है और बाबा के महावाक्य को याद कर लें, चाहे शरीर क्यों न चला जाए परंतु खुशी न जाए। कितनी बड़ी बात कह दी, शरीर जाना तो बहुत बड़ी बात है ना, दुनिया में सबसे बड़ी चीज शरीर छूटना है, वो भले छूटे दूसरा मिल जाएगा, बस खुशी से भी यही तो बहुत दिन के बाद आती है। तो इतना महत्व तो बाबा खुशी को देते हैं, और एक बहुत सुंदर रहस्य है कि दुनिया में क्या होता है, मनुष्य को मनचाही चीज मिल जाए तो बहुत खुश, सफलता मिल जाए तो बहुत खुश, लेकिन सभी जो युवक बैठे हैं क्लास में वो इसको अच्छी तरह पक्का कर दें, खुशी ही सफलता की चाबी है। हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस, पक्का कर दें सभी, खुशी ही सब प्राप्तियों का आधार है। जो खुश रह सकते हैं उनकी मानसिक शक्तियाँ बहुत बढ़ जाती हैं, और जो छोटी छोटी बातों में परेशान रहते हैं उनकी शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। तो हम खुश रहेंगे तो हमारा चेहरा क्या काम करेगा, सेवा करेगा। मैं एक अनुभव सुना देता हूँ। दिल्ली में मैं एक डेढ़ मास पहले था, एक व्यक्ति आया कि मेरी बहू को कैंसर हुआ है, आयु ज्यादा नहीं है 30 साल, तो क्या करें उसके लिए। तो मुझे ज्यादा तो याद नहीं, मैंने क्या बताया था कि वो स्टेशन पे मिला मुझे, मैंने कहा उसे कहना बहुत खुश रहे और ये संकल्प करे मैं ठीक हो जाऊंगी, और एक दो विधि बताई मैंने उसे, दवाई चालू रखे, लेकिन मन में बहुत कॉन्फिडेंस ले आए कि मैं ठीक होंगी, मुझे कुछ नहीं होने जा रहा है, अभी फिर मिलेगो, अभी अभी नजदीक में 3-4 दिन पहले मैंने पाल से आया तो दिल्ली में वो मिले मुझे, तो बहुत खुश थी, बहुत खुश। और उसे देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता ये कैंसर पेशेंट है, पर वो ठीक होती जाती है। तो मैं एक भाई है वहाँ बुजुर्ग से, उनको कह के आया था कि तुम इनके पास जाते रहना और इसको हिम्मत देना हमेशा कि तुम ठीक हो जाओगी, क्योंकि लौकिक वाले जब आते हैं तो कुछ और शब्द बोलते हैं, क्या छोटी आयु में तुम्हें कैंसर हो गया, अब तुम कैसे जियोगी, 30 साल में कैंसर, कैसा भाग्य है तुम्हारा, है दुनिया वाले ये बोलते हैं ना, कोई ईर्ष्या करता है कोई कुछ करता है, तो उल्टा बहुत बोलते हैं। तो न चाहते हुए मनुष्य का मन थोड़ा सा बेचारा का उदास हो ही जाता है ना, तो भाई उसके पास जाता रहता है और उसे अच्छी अच्छी बात सुना के पक्का करता है तो बिल्कुल ठीक हो जाओगी, खुश रहना। वो खुश थी बहुत, उसका युगल भी साथ आया था, बहुत खुश थे दोनों, बिल्कुल उम्मीद पूरी कि जल्दी ठीक हो जाएंगे, ठीक होते जाते हैं। एक और मिली मुझे कलकत्ते की माता नीचे, उसको मिली, कहा मेरे पीछे पीछे आ रही, मैंने कहा बोलो क्या काम है, बस एक गुड न्यूज देना है, मैंने कहा देखो जल्दी, कहा मैंने आपको फोन किया था, मेरे हाथ में ये नसें जाती है ना, ब्लॉकेज है ना, हार्ट की बीमारी हो गई है, तो कुछ बताया होगा मैंने, कहा भी चेक कराया 3 मास के बाद कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं, सब हो गया। तो हमारी खुशी, हमारा हल्कापन, हमारा आत्मविश्वास हमें सफलता की ओर ले चलता है। सबको ये याद रखना है, खुशी खो दे तो अनेक बीमारियां बढ़ जाएंगी। देखो आप सबने सुना होगा, मैं यहाँ क्लास में सुनाई है ये बात, वैज्ञानिकों ने, रशिया के वैज्ञानिकों ने पानी पर बहुत अच्छे प्रयोग किए हैं। और उसमें छोटा सा प्रयोग जो मुझे दिखाया गया लैपटॉप पर, एक भाई ने, इंजीनियर ने दिखाया कि दो गिलास में पानी लिया, एक गिलास पर लिख दिया नफरत हेट, दूसरे गिलास पर लिख दिया लव प्रेम, सारी रात दोनों गिलास रख दिए बच्चे कमरे में, और जब सवेरे दोनों के पानी को चेक किया तो जिसपे हेट लिखा था नफरत, उसमें काली तरंगे पैदा हो गई थी। उन्होंने फोटो लिए उसके, उनके पास ऐसे कैमरे हैं जो अंदर की फोटो लेता है, पानी तो वैसा ही दिखेगा लेकिन अंदर काली तरंगे थी, और जिसपे लव लिखा था उसमें गोल्डन तरंगे, बिल्कुल सुनहरी, एकदम अच्छा लगे वो पानी। सोचिए एक रात पानी रखने से, केवल लिखने से, किसने कुछ किया नहीं, केवल लिखा था, ऐसी तरंगे पैदा हो सकती हैं। बहुत अच्छी तरह सुने सभी, हमारे शरीर में 70% से ज्यादा पानी है, 70%, हाँ बहुत पानी है। इसलिए पानी की कमी अनेक बीमारियों को जन्म देती है। आज भी कहीं अखबार में था, मैं पढ़ा तो नहीं, एक गिलास पानी पियो हार्ट की बीमारियों को भगाओ, ऐसा स्लोगन लिखा था ऊपर, मैं लिखना ही पढ़ा, उसमें लिखा था पानी की कमी दिल की बीमारियों को जन्म देती है। तो देखो इतना पानी है शरीर में, जहाँ तहाँ घूम रहा है, मशीन है ना शरीर, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, तो पानी तो चाहिए ना ठंडा करने के लिए, पानी ना हो तो सारी मशीन गर्म हो जाएगी, पानी तो चाहिए। तो अगर घृणा लिखने से पानी गंदा हो सकता है, तो जिसके मन में घृणा बसती हो उसका क्या हाल होगा, बीमारी। जिसके मन में ईर्ष्या है, जो बहुत परेशान रहते हैं, जो दुखी रहते हैं, जो क्रोध करते हैं, जिनके मन में निगेटिविटी बहुत है, उनको बीमारी ज्यादा है। और ऐसे सोचे जो बहुत खुश हैं, जिनका मन प्रेम से भरपूर है, जो अच्छे स्वभाव में रहते हैं, जो योग अच्छा करते हैं, उनकी बीमारी समाप्त हो जाती है। इसलिए खुश रहना स्वयं को निरोग रखने का भी साधन है। इसे क्या कहावत है, खुशी जैसे खुराक नहीं है, सबके पास ये खुराक, बादाम मिले या न मिले, ये खुराक तो मुफ्त की है ना, कोई पैसा खर्च करने की जरूरत है, हम गरीब हैं, हमारे पास खुराक खाने के लिए पैसे नहीं है, ये खुराक सब खाए मजे से, सवेरे से ही अपने मन में खुशी के संकल्प कर लें। क्या संकल्प होंगे, वो गीत भी बहुत अच्छा बजाया, सवेरे क्या करता है बाबा, हमें रोज जगाता है, सवेरे उठे आँख खुले तो ये ना सोचना आँख खुली, क्या सोचना, बाबा ने जगाया, कुछ देना चाहता है, एकदम मन खुशी से भरपूर कर दे सवेरे। अगर उठते ही मन खुशी से भरपूर होगा तो सारा दिन खुशी स्वतः ही बनी रहेगी। और उठते ही सिर पे हाथ मारा है, इन बच्चों का क्या होगा, ये तो मुझे बहुत तंग करने लगे, तो खुशी गई। तो बहुतों की खुशी दूसरों के कारण नष्ट हो रही है, इस पर ध्यान देंगे सभी। बहुत माताओं को उनके बच्चे खुश नहीं रहने देते, जिन माताओं ने अपने बच्चों के लिए जान दे दी, ऐसा राज जगे, बच्चे बड़े होके माँ को खुश नहीं रहने देते तो माँ दुखी रहने लगती है। लेकिन अब कौन मिल गया, कौन मिल गया, बच्चा भी मिल गया, बहुत अच्छा। ये नशा हो जाए तो उठते ही अपने मन को खुशियों से भरपूर करेंगे। बहुत खुशी की बातें हैं। दूसरे शब्द थे गीत में, हम हो गए उसी के वो हो गया। कितनी बड़ी खुशी और नशे की बात है ये, भगवान हमारा हो गया। उठते ही आँख खुलती है। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी कभी इसी हॉल में कि अपने भाग्य को देखो, उठते ही सामने कौन खड़ा होता है। तब बाबा ने कहा था, बूढ़ा बाबा, ब्रह्मा बाबा, श्री बाबा, बूढ़ा बाबा। उठते ही प्रभु मिलन होता है, हम जैसा खुश नसीब कौन होगा। पॉइंट लिखेंगे, सभी लिखेंगे, अच्छी अपनी तैयारी करें। बाबा हम सबको खुश देखना चाहता है, और भगवान को कैसा लगता होगा जब वो ये देखता होगा, मेरे बच्चे दुखी, मैं दुख करता, अपने बच्चों का ही दुख नहीं मिटा पाया, उसे भी निराशा हो जाएगी ना, क्या करूँ और इनके लिए। रो लिया करो, और क्या करना है। बाबा जा रहा था, इन्हें रोना आ रहा था। माताओं को तो रोना आता है, तो रो लिया करो, हर्जा नहीं। माताओं को रोने की छुट्टी है, कोई इसमें तकलीफ नहीं है। तो सवेरे उठते ही अपने मन को खुशी की खुराक खिलानी है, पहली चीज। फिर हमें खुशी मिलेगी, हमारी खुशी की बात हम कर रहे हैं, बाकी ज्ञान के चिंतन से हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा, हमें खुशी मिलेगी बाबा से बातें करने में। और बाबा से बातें कौन कर सकेंगे, और कुछ, और बताओ। ठीक है, आप सबके उत्तर भी ठीक हैं। हाँ, बाबा से बातें वही कर सकेंगे जिन्हें सारा दिन मनुष्यों से बात करने में रस नहीं होगा। सोचा आपने कभी? और मनुष्यों से बातें कर रहे हैं तो बाबा से बात करने की फुर्सत ही नहीं होगी। इसलिए बाबा से कोई भी नाता जोड़कर रोज सवेरे बातें अवश्य करे। इसको ये न समझे ये हल्का योग है, ये योग जीवन को आनंद से भरने वाला है। हमें केवल विकर्म ही थोड़े विनाश करने हैं, जीवन को आनंद से भी भरना है, शांति से भी भरना है, प्रेम से भी भरना है, शक्तियों से भी भरना है। विकर्म विनाश करने के साथ हमें ये सब काम भी करने हैं। इसलिए सेकेंड बात हुई, बाबा से बहुत अच्छी रूढ़िहान करना। और तीसरी बात, सवेरे अपने योग को भी अच्छा बनाने के लिए और खुशी की खुराक खाने के लिए भी पांच स्वरूपों का अभ्यास, इसको भूलेंगे नहीं सभी। दो चार बार कर जाओ, एक एक मिनट में कर जाएं। पांच स्वरूपों का अभ्यास हमें अनेक स्मृतियां दिलाता है। हमारी स्मृतियाँ सो जाती है, हम सो जाते हैं, विस्मृत हो जाते हैं, तो हम बिल्कुल न जाने क्या क्या सोचते हैं, किसके अधीन हो जाते हैं। आज भी मुझे चार पांच फोन ऐसे आए जो केवल यही थे, हम बहुत सोचते हैं क्या करें। तो मैं तो हंसी में कह रहा हूँ, सोचते रहो क्या करें, और परेशान होते हैं ना बहुत सोच के। का हमें पता ही नहीं चलता हम क्या सोच रहे हैं। हम चाहते हैं हम ये सब न सोचे, पर सोचते ही रहते हैं। एक का तो था कि मैं तो दूसरों के बारे में ही सोचता हूँ सारा दिन, भाइयों के फोन पे दूसरों के बारे में सोच रहा हूँ, और सोच सोच के फिर सोचता हूँ कि मुझे नहीं सोचना चाहिए, और सोचता हूँ का मैं दुखी हो गया हूँ, बताओ मुझे क्या करूँ। तो बहुत सोचने की आदत खुशी को नष्ट करती है, और इसका सबसे सुंदर तरीका है इसे बचने का पांच स्वरूपों का अभ्यास। और फिर मुरली हमें बहुत खुशी देगी। मुरली में कुछ बातें खुशी की आएगी, वो पढ़ने वालों पर भी है कि वो उन खुशी की बातों पर ध्यान दिलाते हैं या नहीं सबका। रोज मुरली में ऐसी नशे और खुशी की बातें आती है, कोई सीधा पट जाते हैं और कोई इसको अंडरलाइन कराते हैं। कितनी अच्छी बात बाबा ने कही, रोज आती है स्वमान वरदान और उसमें स्लोगन में भी आती है और शुरू में बहुत अच्छी अच्छी बातें आती हैं। तो सवेरे हम स्वयं को इन चीजों से खुशी से भरेंगे, करना सबको स्वयं है और कोई तो नहीं करेगा। बहुत अच्छी तरह से सावधानी पूर्वक एक बात ध्यान में, मैं ये बात इस विषय में बताऊंगा आपको सबको, जैसे जैसे समय समीप आ रहा है एक विशेष चीज हो रही है, ये बात बड़ी सूक्ष्म है और इसको आप समझ लें। सभी ने जन्म जन्म जो विकर्म किए हैं, जो विकार रहे हैं, जो निगेटिविटी रही है, वो इमर्ज हो रही है, वो एक्टिव हो गई है ब्रेन में और वो मनुष्य को बहुत परेशान कर देगी एक दो साल में। आज भी मुझे दो फोन ऐसे आए जिनके लिए मैंने उन्हें बताया, सावधान किया, ये होने लगा है आपको। सीधा बताया उस भाई ने, मेरे माँ बाप बचपन से ज्ञान में, मुझे ज्ञान का पता था लेकिन मैं चला नहीं, मैंने बहुत पाप कर लिए, अब बड़ा हो गया हूँ, एक साल से ज्ञान में हूँ, लेकिन मेरा मन परेशानियों से भरा हुआ है, क्या कारण है और मैं क्या करूँ। तो देखिए ये क्यों हो रहा है कि वो सभी भी कर्म अब इमर्ज होने लगे हैं, इसलिए जिसके अंदर निगेटिव संकल्प होंगे उसके वो विकर्म और इमर्ज होंगे। तो जैसे हवा का काम करेंगे, आग थोड़ी लगी हो हवा चलेगी, तेज हो जाएगी। इसे बहुत जरूरी है अच्छी स्वमान में रहना, अपने को पॉजिटिव करना, पॉजिटिव अच्छा सोचना। जिन्होंने आज तक अपने जीवन को निगेटिव रखा है, ब्राह्मण बनने के बाद भी पर चिंतन में साल बिता दिए, 10-20 साल बिता दिए, अलबेले बन में जीवन बिता दिया, कुछ पाया नहीं, कुछ किया नहीं, अब उनको कष्ट होगा बहुत, समय आ पहुंचा है। कोई किसी को सजा नहीं देगा, धर्मराज पूरी कहीं ऊपर लगेगी नहीं कोर्ट, एक एक को बुलाया जाएगा और इधर, और जज जज साहब बैठे हैं और जज बैठे होंगे और कहेंगे तुमने ये किया, ये सजा खाओ, अरे को अंदर की फीलिंग होगी, सब दिखने लगेगा तुमने क्या क्या किया है और उसकी ये सजा मिल रही है। तो ये खेल शुरू हो रहा है, इसलिए हमें स्वयं को बहुत खुश रखने का संकल्प कर लेना चाहिए। छोटी बातें अगर किसी को दुखी करती हैं, तो उसको बहुत कष्ट होगा, ये तो बहुत छोटे दुख हैं। बाबा ने कहा अब के दुख से तुम्हारे चींटी के समान हैं, दुखों के तो पार गिरेंगे। इसलिए खुश रहने को संस्कार बनाए। मुझे ऐसे बाबा के बच्चे मिलते हैं, साधारण कहते हम तो बहुत खुश रहते हैं, कुछ भी हो जाए, कोई मरे या जिए, हम तो हलवा घोट के पिए, उनका एक स्लोगन होता है, कुछ भी होता रहे, सब होता रहेगा, हमें तो खुश रहना है। मैं भी एक बात कहा करता हूँ, पहले अपने को कहता था, अब सबको कहता हूँ, बाबा संसार को स्वर्ग बनाने आया है, हम सब जानते हैं, वो स्वर्ग बना देगा। कोई लड़ते रहे, परेशान होते रहे, यज्ञ में विघ्न डालते रहे या खुद विघ्नों में रहे, फिर बाबा तो स्वर्ग बना के चला जाएगा, तुम लड़ते रहो, हम तो चले, हो गया नहीं, उसके स्वर्ग बनाने के काम को कोई रोक नहीं सकेगा। उसका यज्ञ इतना पावरफुल है, इसमें सारा संसार विघ्न डाले, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता, इसमें सारा संसार स्वाहा होने जा रहा है। इसलिए हमें अपने को मुक्त रखते हुए अपनी स्थिति को बहुत सुंदर बनाना है। अब सोचेंगे प्रैक्टिकल में, खुशी क्यों नष्ट होती है? कारण तो 100 निकल सकते हैं, पर हम 10 कारण निकालेंगे केवल। बोलो खुशी नष्ट क्यों होती है? नहीं आपकी, किसी की भी, क्यों नष्ट होती है खुशी? इच्छाओं के कारण, और इच्छाओं में भी एक चीज जोड़ दे, इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो खुशी नष्ट होती है। सब भाई बोलेंगे, दूसरा बेगान नहीं बोलेंगे, और है? और चिंतन खुशी को नष्ट करता है, वह नहीं पीछे वालों से पूछेंगे ऐसे नहीं सोचा कर आप, मान नहीं मिलता तो बिल्कुल ठीक भाई बोले, अब कोच वाले जज साहब आप बोलो, बोलो और बोलो, जज साहब जरा हिंदी कम जानते हैं, बोलो। निगेटिव सोचने के कारण कोई बहुत निगेटिव सोचते है, मधुबन में सुख ही सुख है, वो सोचते नहीं यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, सारा सुख खत्म। निगेटिव सोचने वालों को सुख भी नहीं मिलता, खुशी भी नहीं रहती। पीछे वाली माता है, हाथ उठा के बोलेंगे, एक बोलो, व्यर्थ बातों में रहने के कारण, बहुत अच्छी बात बताई, इसे बचना है, व्यर्थ बातें नहीं, बोलो। पास्ट को याद करने के कारण, बिल्कुल बहुत अच्छी बात बताई, बात नहीं मानता तो खुशी नष्ट होती, बहुत अच्छा भाई बोलो। कोच वाले बीमारियाँ, मधुबन वाले सब बैठे हैं, बीमारियों के कारण, नरोत्तम सेठ जी बोलो, सबसे यंग मैन, वे सबसे बुजुर्ग हैं हमारी क्लास में, इसलिए हमने इनको यंग मैन कहा, बड़े एनर्जेटिक हैं, अब तक भी सेवा करते हैं। फ्यूचर की चिंता ये भी होता है, इनसिक्योर फीलिंग, भविष्य का डर, एक होता है चिंता, एक होता है डर ये न हो जाए, ये कुमार कुमारियों को रहता है, आज ये का फोन का मुझे डर रहता है, मैं यहाँ में चल सकूंगा या नहीं, जो तुम चाहोगे वही होगा, चलना चाहोगे चलोगे, नहीं चलना चाहोगे नहीं चलोगे, इसमें डर की कोई बात नहीं। भविष्य का डर और भविष्य की चिंता, इनसिक्योर फीलिंग मनुष्य की खुशी को छीनती है। पीछे वाले भाई बताए, ईर्ष्या द्वेष के कारण, बिल्कुल ठीक है, कोई आगे बढ़ रहा है और ये जल रहे हैं, हाँ व्यर्थ चिंतन, कोई आगे बढ़ रहा है और दूसरा व्यक्ति जल के अपनी खुशी को जला रहा है, तो देखो एक बहुत अच्छी बात इसमें याद रखेंगे, और बहुत सारे कारण हैं, मैंने आपको बताया, सो निकल सकते हैं बातों के कारण, बहुत सारी बातें मनुष्य के पास रहती, एक सूक्ष्म बात में सभी ध्यान देंगे, एक व्यक्ति आगे बढ़ रहा है उसको बहुत सफलता मिल रही है, दूसरा व्यक्ति ईर्ष्या कर रहा है, तो वो किससे ईर्ष्या कर रहा है, उस व्यक्ति से या सफलता से, सफलता से, और जिससे हम ईर्ष्या करते हैं वो हमारे पास रहेगी कभी नहीं, तो ये समझ लें जो दूसरे को आगे बढ़ता देखकर ईर्ष्या कर रहा है वो अपना ही मार्ग रोक रहा है, वो तो बढ़ता ही जाएगा क्योंकि उसने सफलता को अपना फ्रेंड बना लिया, पर सफलता को सोचने वाले ने अपना शत्रु बना लिया, क्योंकि वो नफरत सफलता से कर रहा है व्यक्ति से नहीं, ये सूक्ष्म गति सभी ध्यान रखेंगे, इसलिए ईर्ष्या द्वेष से किसी को कुछ मिलता नहीं है। दूसरे आगे बढ़ रहे हैं तो हमें क्या सोचना चाहिए, हम भी आगे बढ़े, उनके बाद भी इसी सराहना करें, जरूर ये व्यक्ति कोई अच्छे कर्म करके आया है, जरूर इसके पास बहुत अच्छे टैलेंट्स हैं, योग्यताएं हैं, उमंग उत्साह है, तभी आगे बढ़ रहा है, भाग्य लेकर आया है, ऐसा सोचेंगे तो वही चीज हमारे साथ भी हो जाएगी, तो मुझे भी कुछ करना है आगे बढ़ने के लिए। ऐसा देख सकते हैं आप सारे संसार में जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं वो पीछे रह जाते हैं आगे बढ़ते हैं, वो हमेशा पीछे रह जाते हैं, और जो दूसरों की ईर्ष्या की परवाह नहीं करते वो निरंतर आगे चलते जाते हैं। इसलिए यदि कोई हमसे ईर्ष्या कर रहा हो तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, किसी की ईर्ष्या हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती, ठीक बात है या नहीं, कन्याएं बहुत बैठी है समझ गए ना, हमें ईर्ष्या करनी नहीं है और दूसरे की ईर्ष्या हमें रोक नहीं सकेगी, हम निरंतर आगे बढ़ते चले, आगे वही मनुष्य बढ़ता है जो बार बार पीछे मुड़कर नहीं देखता, जो पास्ट को देखकर अपनी खुशी को खो रहे हैं, वीक डे उसके चिंतन में रहते हैं, वो वर्तमान का सुख भी नष्ट कर देते हैं और बार बार पीछे देखने वाला क्या होगा, बार बार पीछे देख रहे हो तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे, ठोकर भी लग जाएगी ना, कोई आगे से टकरा जाएगा। माताएं को बहुत ऐसी होती हैं, अपने लक्ष्य को देखती है, वहाँ जाना ना वहीं जाना है, बीच में क्या है वो देखती नहीं। मैं कहता अरे बहने आगे तो देख लो, लोग भाई भी जा रहे इधर से, वही देख रहे वहाँ पहुँचना है बस। है तो अच्छी बात, मैं उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ कि माताओं में ये गुण है, केवल लक्ष्य को देखती है, बीच में क्या है उसे नहीं देखती। लेकिन हमें पीछे नहीं देखना है, बार बार पीछे माना आपको, पीछे माना दूसरे मनुष्यों को, जहाँ भी हमारे संकल्प नष्ट होते हों उधर हमें नहीं देखना है। सबसे बड़ा खजाना संकल्पों का खजाना, भाग्य निर्माण करने का खजाना संकल्पों का खजाना। जिसके पास जितने सुंदर संकल्प हैं, जिसके पास कम संकल्प हैं, जिसके पास पॉजिटिव संकल्प हैं, वो सुखी है, वो आगे है, वो बहुत खुश रहेगा। हमारे सामने ऐसा समय आएगा जिसे हमें देखना ही पड़ेगा। आज की मुरली में बहुत अच्छी बात थी, तुमने भी ये पाठ अनेक बार बजाया है और मैंने भी अनेक बार बजाया। बाबा बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, विनाश भी होगा अनेक बार हुआ है, हमने अनेक बार उसको देखा है, देखा ही नहीं अनेक बार उसको खुशी से पार भी किया है। ये प्रैक्टिस हमें अभी से डालनी पड़ेगी कि जो कुछ होगा वो होगा, उसे हमें देखना है, चिंताएं भी नहीं। आज मुझे किसी का फोन था, उनकी परिस्थिति तो निश्चित रूप से बड़ी खराब थी और ये सोचने के लिए वो बाध्य थे कि हम खाएंगे कहाँ से, बेचारों को ऐसी परीक्षा आ गई थी। आजकल संसार में लोग बहुत हो गया है, जो सज्जन लोग हैं, जेंटिल हैं, उनकी संपत्ति दूसरे जो तेज पर आते वो हड़प लेते हैं, छोड़ देते हैं उन्हें। तो मैंने उन्हें पहले तो यही सांत्वना दी कि बाबा तुम्हें रहने को मकान भी देगा और खाने को भोजन भी, चिंता न करो। मकान उनका 30 साल पुराना, आधे की छत गिर गई जो दूसरे के पास था, वो कह रहे थे हमारी भी कभी गिर सकती है। मैंने कहा तुम्हारी गिरेगी नहीं, संकल्प कर दो पक्का, हमारे मकान की छत गिरेगी ही नहीं। जब उनके मकान की छत गिर गई तो कहाँ रहेंगे, बेचारों को ठिकाना नहीं है कोई और। तो बाबा में अगर पूर्ण विश्वास रहे, बाबा हमें भूखा नहीं रखेगा, है विश्वास या नहीं। बाबा ने एक बात बहुत अच्छी बात कही थी, इसका उत्तर दिया था, बाप अपने बच्चों को भूखा नहीं रखेगा, क्योंकि रहस्य माताओं के लिए बहुत सुंदर, क्योंकि तुम बाप को रोज भोग लगाते हो तो बाप भूखा नहीं रहता तो बच्चों को भूखा कैसे रखेगा। और जो भोग ही नहीं लगाते उनका क्या होगा, भाई लोग लगाते हैं या नहीं, जब खाते हैं उससे पहले तो लगाते हैं ना। तो इस बात को भूलना नहीं है। देखिए बात बड़ी छोटी सी है लेकिन बहुत काम की है। हम जिसे रोज खिलाते हैं वो हमें पूरा कल खिलाएगा, कभी भूखा रहने ही नहीं देगा, गारंटी है उसकी। तो हम अच्छे चिंतन के द्वारा अपने को बहुत खुश रखते हैं। और एक और बात जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, हर माँ बाप ये चाहता है कि उसके बच्चे बहुत योग्य हों, बड़ी नेचुरल बात है, सब चाहेंगे उसके बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार हों, कंपटीशन भी है ना समाज में, उसके बच्चे बहुत होशियार हैं, मेरे भी होशियार हों, लेकिन सब जगह ये होता नहीं है। माताओं को इसका ज्यादा अनुभव है, हर घर में ये होता नहीं है, कुछ बच्चे पढ़ाई में बहुत होशियार तो कुछ नहीं, कुछ बचपन से ही बहुत कम बुद्धि वाले तो माँ बाप चिंतित रह गए। आज तो एक ऐसा भी केस मेरे पास लाई माता, आप सुनेंगे तो सोचेंगे देखो कर्मों की गति क्या है। बच्चे ने जन्म लिया और 4 दिन का ही हुआ था तो आईसीयू में भर्ती। माता आईसीयू को नहीं जानती है, हॉस्पिटल में जिसकी बहुत सीरियस स्थिति हो जाती है ना उसको उसमें रख देते हैं, उसको आईसीयू बोलते हैं। विशेष उनका ध्यान रखना पड़े। 4 दिन का होने के बाद आईसीयू में है, 4 साल का हो गया है, खर्च भी कितना हो रहा होगा, क्या कर्मों की गति है सोच लें। सभी सोचने की बात है। बचपन तो बहुत सुखों का होता है ना मनुष्य आत्मा के लिए। 8-10 साल बच्चा हंसते बहलते खेलते लड़ते झगड़ते गिरते पढ़ते बिताता है ना खुशियों में, लेकिन 4 दिन से ही आईसीयू में हॉस्पिटल में न माँ का प्यार न माँ के दूध का प्यार, कोई पालना नहीं। कैसे कर्म लेकर आया होगा ना। तो जिन्हें हम अपने बच्चे समझ रहे हैं वो तो ठीक है, वो हमारे बच्चे हैं, लेकिन वो आत्माएं तो अपने साथ न जाने क्या क्या लाई है ना। माँ बाप का उनसे मोह भी होना लाजमी है, वो उनके बच्चे हैं, परंतु वो आत्मा क्या क्या लेकर आई है इसके जिम्मेदार तो माँ बाप नहीं होंगे ना, इसका जिम्मेदार तो हर आत्मा स्वयं है। तो उन्हें अपने कर्मों को फोन भी करना होगा। तो इसलिए जो माँ बाप है उन्हें क्या करना पड़ेगा, केवल शुभ भावना नहीं, अपने योग को इतना अच्छा बनाना होगा कि उन्हें भी योगदान देकर उनके भी कर्मों को नष्ट कर सके। ये होगा असली प्यार। और रोते रहे चिंतित रहे तो ये मोह इसका इलाज नहीं होगा, इससे दुख बढ़ता जाए। योगदान कैसे दिया जाए तो सीख लेना, यहाँ बहुत टीचर है मधुबन में, वे सिखा देना। ये सब टीचर बैठे कोच पर है ना, जो आगे आगे ये टीचर है मधुबन के, सुशील भाई हाथ उठा देना जरा, इससे सीख लेना। बच्चे बड़े हैं या छोटे हों, 4 दिन के बच्चे की बात मैं नहीं कर रहा, किसी भी बच्चे को वो अमेरिका हो या लंदन हो, आप यही से योगदान देंगे तो उनका जीवन बहुत अच्छा होगा। क्योंकि माताएं तो मेरे पास बहुत समस्याएं लेकर आती हैं बच्चों की, और वो है उनकी समस्याएं। आज मैं किचन में चला गया, किचन में जाना मेरा पूरा शांति का समय होता है। मैं एक दो को बुलाया था, भाई वहाँ पूरी शांति रहती है, मुझे आप आ जाना बात। वहाँ तो इतनी भीड़ थी मैं भोजन भी नहीं देख पाया कैसा बन रहा है। तो सब माताएं बच्चों की समस्या लेकर आई थी, तो समाधान केवल योग अभ्यास। इसलिए अगर आप अपने परिवारों में अच्छा सब कुछ देखना चाहते हैं तो न मोह से काम चलेगा, न चिंताओं से, न परेशान रहने से, केवल योगदान से। मुझे आजकल बाबा की वो बात रोज याद आती है, 78 में बाबा ने कहा था, अब तुम योग करते हो अपने भी कर्मों को विनाश करने के लिए, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा तुम्हें दूसरों के भी विक्रम विनाश करने पड़ेंगे। वो दिन आ गए हैं। तो इसके बिना समस्याओं में परिवार उलझता जाएगा। सभी जो भी यहाँ बैठे हैं ध्यान से सुन लें, परिवारों में कोई भी समस्या है उसका समाधान है योग बल, चिंता बल नहीं। समझे ना, परेशान रहने से नहीं काम होगा, बाबा के भरोसे जीने से, या आत्मिक दृष्टि और साक्षी भाव अपनाने से कि सभी आत्माओं का अपना अपना कर्मों का खेल है, इसमें कोई माँ बाप कुछ करने में समर्थ नहीं है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हरेक अपना कर्मिक अकाउंट साथ लेकर आए हैं, हमें अपनी शुभ भावनाओं से लेकिन साथ में योग बल से उनको मदद करनी है। ऐसी बहुत चीजें देखी मैंने। मैं सुना रहा था दिल्ली की बात, मैं भी नेपाल से आया, जब जा रहा था एक बाप फिर मेरे पास आया, उसका लड़का 19 साल का कोमा में, इंजीनियरिंग करने भेजा था, पता नहीं कौन आया कहाँ क्या हुआ उसको, वो चौथी मंजिल से गिरा है नीचे, बच्चों ने अफवाह फैलाई खुद कूदा है। मैंने कहा कोई बच्चा खुद क्यों कूदेगा, उसको कोई समस्या नहीं थी। किसी कंपटीशन में वो जा रहा था जहाँ उसको फर्स्ट प्राइज मिलने थे, दूसरों ने ईर्ष्यावश उसे धक्का दे दिया। ये बात वो बता नहीं रहे, सिर में चोट लगी, कोमा में 3 मास हो गया था। अब अफसोस, 19 साल का बड़ा लड़का कोमा में हो, हॉस्पिटल में रख के भी क्या करें बेचारे, पैसा कहाँ से लाएं, घर में रखा था। तो मुझे कहा इसको आना नहीं, दृष्टि लेके जाना। तो मैंने उनको कुछ विधि सिखाई थी, उसके ब्रेन को एनर्जी देना, पानी चार्ज करके देना, नली से पानी देते है ना, और उसके लिए 1 घंटा योग करना। तो अभी मैं गया, अभी मैं 13 तारीख को दिल्ली में था, तो उसके पास ले गए, आंखें खोली, कार्य थोड़ा थोड़ा कुछ बोलते हैं तो सेंसेशन जैसी होती है, मतलब सुनता है, थोड़ा कुछ जा रहा है। तो उन्हें उम्मीद बन गई कि ये बाहर आ जाएगा कोमा से। तो देखिए, समस्याओं का हल केवल योग बल। ये सभी माताएं जो यहाँ बैठे, विशेष मैं माताओं को कहूंगा, चिंतित नहीं, संभाले अपने को। कई माताएं अपने बच्चों के कारण खुद बिल्कुल बेहोश हो जाती है, ध्यान योग सब छूटा, भगवान को भी छोड़ देती है, दुखी इतनी होती है कि बाबा को भी छोड़ देती है, और फिर सोचती होगी कि बाबा को छोड़ने से दुख छूट जाएगा। हो गया ऐसा? जो असली चीज है हमारी, सवेरे योग करना, बाबा का हाथ पकड़े रहना, उसके महावाक्य सुनना, ये तो असली समाधान है ना, इसको छोड़ना नहीं है। तो समस्याएं भी विदाई लेती जाएंगी। मन नहीं मिलता किसी को तो खुश नहीं रहते, कोई बार बार बुरा बोलता रहे तो खुशी चली जाती है। प्रैक्टिकल बात है ना, घरों में किसी व्यक्ति को कोई बार बार बुरा बोले, कितना बड़ा मनुष्य हो, पावरफुल हो, खुशी को कायम रखना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। ऐसे में क्या करेंगे? एक तो बहुत हल्के रहना। हर चीज को अगर हम सीरियसली लेंगे तो उनका हर बोल हम ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहे हैं, और वो हमारे अंदर जाके हमें दुखी करेगा। लेकिन हम हल्का कर दें उसको, ठीक है, इनका काम बोलते रहना ही है, बोलना दो, इनका काम बोलते रहना और हमारा काम नहीं सुनते रहना, नहीं कुछ और बताओ, इनका काम बोलते रहना और हमारा काम ऐसा करते रहो। एक बहुत अच्छी विधि मुझे ख्याल आई, उसके शब्द आपके कानों में आए और आप उनको ऊपर भेज दो, तो बाबा के कानों में जाओ, करके देखना प्रैक्टिस। तो ये समस्या बहुतों की है, ये ऐसी समस्या होती है, कोई ना कोई पीछे ऐसा लगा रहता है, हर एक के पीछे कोई ना कोई है जो बोलता ही रहेगा, बोलता ही रहेगा, बोलता ही रहेगा, और बेचारा सुनने वाला भी क्या करेगा, खुशी तो उसकी जाएगी। तो आदत बना ले, इधर से बोल रहे हैं, इधर से ऊपर भेज रहे हैं, चलो इधर चलो, बाबा तो सबकी ले लेगा, वो तो सागर है, उसमें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। थोड़ा अपने को हल्का भी रखेंगे, और ये जानते हुए कि ये आत्मा तो बोलती है, चाहे वो ईर्ष्यावश बोले, अहंकार वश बोले, अपने क्रोध के संस्कार वश बोले, या हमारा अपमान करने के लक्ष्य से बोले, लेकिन हमें बाबा के कुछ अच्छे बोल रोज याद रखने चाहिए। ये मुरलियों से हमें मिलते हैं, और एक बाबा का बोल बहुत सुंदर है ज्ञानियों के लिए। ज्ञानी आत्मा वो है जो मान अपमान, सुख दुख, हार जीत, निंदा स्तुति में समान है। इसको जरा पक्का करें, ये काम है तो कठिन, पर करना तो हमें ही है ना। मान में तो सब खुश होते हैं, लेकिन अपमान में भी खुश रहे, करना हमें ही है, क्योंकि हम ज्ञानी आत्माएं हैं, हमारे पास ज्ञान है। तो थोड़ा अपने को हल्का करेंगे, ये महावाक्य याद रखेंगे, और जो ज्यादा बातें जिनको सुननी पड़ती है उनको आदत तो पड़ ही जाती है, आदत पड़ जाती है तो बोलते ही रहते, इनकी टेप रिकॉर्ड चलती रहती है, चलती रहे, हम बाबा की आवाज सुनते रहे और बाबा को भेजते रहे। कोई बार बार अपमान करे, खुशी न जाए, क्या करेंगे भाई बताएंगे। कोई बार बार अपमान करे, अपनी सुहान को याद रखेंगे तो अपमान की फीलिंग बहुत कम होगी। सुहान का अर्थ ही है स्वयं को स्वयं मान लेना। तो जब हम स्वयं उस मान में रहते हैं तो न तो दूसरों से मान की कामना रहती है और हमारे चारों ओर एक पावरफुल आभा मंडल बन जाता है जो हमें सुरक्षित रखने लगता है। तो जो भी बातें हर एक की खुशी को छीनने वाली हैं, सभी ध्यान लेकर नहीं बहुत बैठी है, माता के साथ काम कर रही है, माँ कुछ ना कुछ बोलती रहती है, तुम ऐसी हो, पढ़ते नहीं हो, कुछ काम भी नहीं सीखती हो, पता नहीं क्या करोगे जीवन में। तो माताओं की आदत होती है अपनी कन्याओं को कुछ ना कुछ बोलते रहना। अब माताओं को इतना ज्ञान तो होता नहीं कि कन्याओं को बुरा बोलने से क्या इफेक्ट होता है, वो तो बोलती हैं और पूछो तो कहेंगे हमें अच्छा सिखाना चाहती हैं, परंतु सिखाने का ये तरीका तो नहीं होता तो कन्याएं बेचारी माँ के प्यार से तो वंचित हो जाती हैं, तो फिर क्या करती है, किसी और से प्यार करने लगती है। नहीं तो कर देना, बुरा तो नहीं लगेगा कन्याओं को, पर इससे भी बचना है। हमें दूसरों की भावनाओं को सम्मान भी देना है, अच्छे स्वमान में भी रहना है। और एक विशेष बात जो बाबा कहते थे, बच्चे तुम्हें तो स्वयं भगवान सम्मान देता है। कहता है ना कल भी दिया, एक दादी की तबीयत ऐसी नहीं थी कि बाबा आए, सबने देखा होगा पहले दादी का चेहरा और 5 मिनट में कैसा हो गया, अच्छा हो गया। परसों तो क्लास कराई दादी ने, ऐसा लग, मैं तो बहुत खुश हो रहा था, अपने रूम में सुन रहा था। हाँ, मैं तो सोचा कि इस बार तो बाबा के मिलन में बहुत आनंद आएगा, बाबा 3 घंटे तो जरूर रहेगा, क्योंकि बहुत ऐसी दादी की आवाज से लगता था कि बहुत ही अच्छी तबीयत है दादी की। चलो खैर जो भी है, हम तो जानते हैं बाबा को अपने इस कार्य को क्लोज करना है जल्दी ही, क्योंकि बाबा ने इसी हॉल में बता दिया था कभी बहुत साल पहले, किसी ने पूछा था कि बाबा ये व्यर्थ पाठ कब तक चलेगा, तो बबा ऐसे तो नहीं बताएगा 5 साल चलेगा। बाबा ने कहा बाबा आएंगे केवल दृष्टि देंगे, मुरली नहीं चलाएंगे और जाएंगे, तब समझ लेना समाप्त हो रहा है पाठ। आज मेरे को 2-4 फोन ऐसे भी आए कि बाबा 3 रथ नहीं लेगा क्या, इस पर टीचर बैंक का आया कि स्टूडेंट सारे पूछ रहे हैं बाबा 3 रथ लेगा, उत्तर दे दो, उत्तर है नहीं, सोचने की बात ही नहीं। यही बाबा के इस सती संगम योगी पाठ की समाप्ति होगी, क्योंकि उसके बाद कुछ और होना है इस सृष्टि पर। बाबा जब अव्यक्त हुए तो जो बहुत सारे प्रश्न होते थे, बाबा का उत्तर था ज्ञान सूर्य छुपा है सितारों को चमकाने के लिए, सूरज चमकता रहता है सितारे नहीं दिखते। तो वही हुआ, बहुत जल्दी पहले साल में सब भूल गए थे बाबा नहीं है, बाबा है। और अब भी ऐसे ही होगा, कुछ और दिव्य पाठ इस सृष्टि पर शुरू हो जाएंगे और बाबा की पालना तो हमें मिलती रहेगी, रोज सवेरे मिलेगी। इसलिए जिसको प्रभु पालना का सुख लेना हो, उस सवेरे उठकर होली के समय तक उस पालना का आनंद लेंगे और ये महसूस किसी को नहीं होगा कि बाबा आ नहीं रहा है, बाबा की पालना नहीं मिल रही है। उसकी पालना तो सुख में है, वो एक सेकंड में भी सबको आनंदित कर सकता है, उसकी पावर है। अभी तो यूज नहीं करता, लेकिन जब वो यूज करेगा एक सेकंड में सबको परम आनंद से भर देगा। तो हम सभी चेक कर लें कौन बातें हमारी खुशी को छीनती हैं, उसका समाधान करें और खुशी